प्राणों में शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटे की मध्य में मैं एक आत्मा हूं। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, भिन्न हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। 5 तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारा गण से भी दूर अंतरिक्ष से भी पार एक दिव्य लोक में परम धाम में जो मुझ आत्मा का असली घर है। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं, स्वतंत्र हूं। वहां मैं स्वयं को देखती हूं एक प्रकाश पुंज के रूप में। मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। उस दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को देख रही हूं। मेरे चारों ओर अमृता का प्रकाश फैला हुआ है। इस परम धाम में मैं आत्मा अपने असली स्वधर्म में स्थित हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं। यही मेरा स्वधर्म है। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर विशुद्ध स्नेह के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप इस परम धाम में मैं आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप। मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में, सतोगुणी संस्कारों में स्थित हूँ। अजर अमर अविनाशी शक्ति धीरे धीरे स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है। अलौकिक स्वरूप है ये। रूप में बिंदु पर गुणों में अनंत है। यही मेरे मात पिता है। मैं आत्मा उस परम मात पिता की संतान जैसे मेरे पिता परम पवित्र है, वैसे मैं उनकी संतान भी पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान पिता की संतान मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूँ। स्वयं को सर्वशक्तिमान परमात्मा के शक्तियों की छत्र छाया में अनुभव करती हूँ। वही मेरे परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। ज्ञान के सागर परमात्मा की संतान मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान है। परम सतगुरु परमात्मा के सर्व वरदानों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा जो परमात्मा के वरदानों के पात्र आत्मा बन गई। परमात्मा मेरा खुदा दोस्त भी है, सच्चा साथी भी है, जिनके सानिध्य में मैं स्वयं को अनुभव करती हूँ। सर्व संबंधों का सुख मैं अपने परमात्मा से प्राप्त करती हूँ। दिव्य और अलौकिक अनुभव है ये। सानिध्य कितना सुखदाई है। परम भाग्यशाली आत्मा जो इस जन्म में मुझे परमात्मा पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कुछ क्षण के लिए मन को परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूँ और समा जाती हूँ इस परमात्मा प्यार में। खो जाओ, समा जाओ। धीरे धीरे मन को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटि की मध्य में स्थित करती हूँ और सर्व कर्मेंद्रिय पर अपना अधिकार प्राप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कवि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। है सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है।
सत्यम शिवम सुंदरम,
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, समुद्र है हम सरिताएं मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं शिव सहज समर्पण स्वीकार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता
शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुरम शिव वसंत है
अजर अमर शिव पिता अजन्मा है निराकार है सत्य सनातन है
सत्यम शिवम सुनिराम
हृदय लगा कर प्रेम लुटाता है भगवान ऐसा अलख निरंजन है
सत्यम शिवम
शिव विराट है हम बिंदु मात्र हैं शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता
शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुरम शिव वसंत है
का अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबेनी संतान हैं
सत्यम शिवम सुनिराम
परम धाम में वास जो करता है हम जग में उसकी पहचान है
सत्यम शिवम
ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता
शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता
शिव अनादि है शिव अनादि है
अनादि है
शिव अनंत है
मधुबन शिव वसंत है
झूमे बहारे नाचे दिशाए, झूमे बहारे नाचे दिशाए, ऐसा प्यारा नगमा आए, ऐसा प्यारा नगमा आए, मिल करके हम गाए अपनी प्यारी धरती को हम ऐसा स्वर्ग बनाए, अपनी प्यारी धरती को हम ऐसा स्वर्ग बनाए। झूमे बहारे नाचे दिशाए, झूमे बहारे नाचे दिशाए, ऐसा प्यारा नगमा आए, ऐसा प्यारा नगमा आए, मिल करके हम गाए अपनी प्यारी धरती को हम ऐसा स्वर्ग बनाए, अपनी प्यारी धरती को हम ऐसा स्वर्ग बनाए।
जब नव निर्वाचित सरपंच यहाँ पधारे हैं, जनता ने उन्हें विश्वास दिया है, सरकार ने उनमें आशाएं रखी हैं, व्यक्ति भी उनमें कुछ चाहता है, राजा है सरपंच भी अपने जग का आज सेवा करके दे सके मूल राशि का ब्याज, जो वोट जो विश्वास उन्हें दिया गया है उसको वो साकार कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला जी।
स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत परियोजना के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय सरपंच महासम्मेलन के आज के हमारे उद्घाटक माननीय मंत्री श्री कांति भाई भूरिया जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी बहुत सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही साथ आपको आध्यात्मिकता के लिए भी विशेष रुचि है, तो आध्यात्म और सरकार की जो योजनाएं हैं ये दोनों सत्ताएं मिलकर के जब कार्य करेंगी तो अवश्य ही हमारे गांवों का संपूर्ण विकास हो सकेगा। ऐसे आज के हमारे माननीय उद्घाटक श्री, साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षा ग्राम विकास प्रभाग की भी आप अध्यक्षा हैं, आपके एक एक संकल्प में भारत के जितने भी प्रांत हैं और उन प्रांतों के जो भी गांव हैं, अंतर गांव की एक एक आत्मा को उस प्रभु पिता का दिव्य संदेश मिले, न केवल उन्हों को संदेश प्राप्त हो परंतु आध्यात्मिकता के माध्यम से वैचारिक क्रांति ला करके हमारे गांव समृद्ध सशक्त निर्व्यसन और स्वच्छ बने, ऐसी जिनके अंदर शुभ भावनाएं हैं। सचमुच आज की ये सभा एक साधारण सभा नहीं है, एक विशेष सभा है, सरपंच सम्मेलन जिसमें 6,000 सरपंच भाई बहनों ने भाग लिया है, एक एक सरपंच अपने गांव का राजा है। कहा जाता है कि ये भारत देश आध्यात्म और कृषि प्रधान देश है, इस भारत की धरोहर हमारे गांव हैं, भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है, और इस जनता की ये विशेषता है कि ग्रामीण संस्कृति आज भी उनके जीवन से मूल्यों के रूप में दिखाई देती है। अतिथि देवो भाव, परस्पर सहयोग की भावना, सद्भावना, सहयोग आदि आदि मूल्य आपके जीवन से दिखाई देते हैं, परंतु शने शने आज ग्रामीण संस्कृति पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं मूल्य होते हुए भी पैदा होती जा रही हैं। द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ग्राम विकास प्रभाग जिसने ये एक संकल्प किया कि सरकार की योजनाओं को यथार्थ रीति से क्रियान्वित करने के लिए जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अनेक प्रकार की क्रांतियां आई हैं और किसानों की आर्थिक समृद्धि भी हुई है, परंतु उसकी जो विलुप्त कड़ी है वो है आध्यात्मिकता। इस आध्यात्मिकता के माध्यम से लोगों में वैचारिक क्रांति ला करके उन्होंने जीवन को समृद्ध, खुशहाल और सुखी बनाना। प्रभाग के द्वारा भारत के विभिन्न गांवों के अंदर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम लोगों ने महसूस किया।
अब हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आगरा से पधारे हुए भ्राता सुरेंद्र सिंह जी।
जो भरा नहीं रसबाहों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें सुदेश का प्यार नहीं, जिसमें गांवों का प्यार नहीं। आज इस पर्व, इस सभा का मूल बिंदु है मूलनिष्ठ समाज में सरपंचों का योगदान, भूमिका। लेकिन इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने से पहले मैं यहाँ आया इस रंगमंच पर, मुझे जो श्रेष्ठ रंगमंच है बोलने का अवसर मिला। एक अदना से जीव के बाद जीव से कुछ शब्द सुनने के लिए आपके समक्ष मुझे अवसर दिया। मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बाद में हूं, मैं गांव का आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। सबसे पहले मैं गांव से आया हूं। आज से एक साल पहले सेक्टर 7 आगरा की बहन गीता, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हम एक अलौकिक जगत में ले जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता था कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी उनके महत्व के बारे में, लेकिन मैं उनसे यही कहता रहा। जैसे कि कल वक्ताओं ने कहा कि लोगों के पास जब कहते हैं समय नहीं है, वक्त नहीं है, ऐसे ही मैं भी उनसे कहता रहा। आखिर उन्हें विजय पाली बहन गीता ने मुझे जब प्रेरणा दी, मैं उनके साथ यहाँ आया और यहाँ मुझे भाई गुप्ता जी मिले, सुंदरलाल गुप्ता, और उन्होंने मुझे ये सफल संचालन यहाँ जो जिस तरह का वातावरण मुझे दिखाया, सही रूप से मुझे लगा कि मैं अलौकिक जगह पर आ चुका हूँ, स्थल पर आ चुका हूँ। और मैं बड़ा प्रभावित हुआ, अचंभित हुआ। मैंने बड़े बड़े सम्मेलन देखे इस देश में भी और विदेश में भी, राधा स्वामी सत्संग सभा का भी मैंने इस तरह का सम्मेलन देखा, लेकिन जो अनुशासन, जो भाइयों का स्नेह, जो यहाँ पर जो दुलार और प्यार मिला, ऐसा लगा मुझे कि मैं घर से अपने घर में ही आ गया हूँ। भाई और बहनों, आप यहाँ आए हैं, इस विश्वविद्यालय ने आपके ऊपर बड़ी आशाएं की हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। कल से मैं सुन रहा हूं भाइयों, हमारा देश गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, इस देश में 80% जनता लोग गांव में रहती है, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश की मान्यता है कि पंच परमेश्वर कहलाता है, और आप तो सरपंच हैं, आप तो पंच से भी ऊपर पंच हैं, सरपंच हैं। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। भारत में विशेष रूप से गांव में भय, भूख और भ्रष्टाचार का आलम है। आज परिवर्तन की चर्चा की गई है, व्यसन विकार उसका आलम है। जिस देश में नारी को देवी माना जाता था, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें त्रसित किया जा रहा है, इस तरह का आलम है। मुझे तो वास्तव में अतिशयोक्ति लगती है, कल्पना लगती है कि कभी हमारा देश सोने की चिड़िया था। कल भी कहा कि इस देश में दूध की नदियां बहा करती थी, दूध दही की नदियां बहा करती थी, लेकिन आज इस देश का हो क्या रहा? पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे ग्रामीण अंचल को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आपको स्मरण करना पड़ेगा उस ईश्वर समान कृष्ण को, धेनु सबे विधि दीन बही, अब आए गोपाल ने अपनाओ, गोदन छीन भयो ये देश को, पाले से पुनः पुष्ट बनाओ, गोचर भूमि सुधारण हेतु अबेर करो न उपाय बताओ, गोकुल सो हरि गाम लसे दधि माखन दूध सुधा वर्षा। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये महासम्मेलन किसी उद्देश्य से बुलाया है, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। एक क्रांतिकारी कवि ने कहा है कि मात्र हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मात्र हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है यह सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में ही सही है, कहीं पर आग तो है, आग जलनी चाहिए। दोस्तों, भाई और बहनों, कानून से काम नहीं चलेगा, सरकार को आपको मदद करनी पड़ेगी। ये महा जो परियोजना है, ये साधारण नहीं है, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
भीलवाड़ा राजस्थान की धरनी को अपनी कर्मठता से 10 वर्षों तक लगातार जिला प्रमुख के पद पर रहकर सींचा। राजस्थान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष 6 वर्षों तक रहे। आज हम उन्हें प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसलिए कि ये जो पदों की लिस्ट है, ये तभी संभव है, ये सफर आसान नहीं है, जब तक हम अपनी जड़ों को पानी से नहीं सींचते, विश्वास की उस तह तक नहीं पहुंचते जो जन जन हम पर लुटाने को तैयार रहता है। ऐसे हमारे बीच में मौजूद हैं भ्राता हफीज मोहम्मद जी।
आज मैं बहुत खुशी है इस मिसाबू में जो राजस्थान का सरमोर कहलाता है, इस पावन धरती पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में देश के सरपंचों का एक महान सम्मेलन हो रहा है। आपने हमने देखा, सरकारें सरपंचों का सम्मेलन बुलाती है, भारत सरकार बुलाती है, लेकिन देश में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो आत्मा को शुद्धि के लिए आत्मज्ञान की बात करता है, वही ये मिशन इस देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, चाहे वो देश के विधायक हों, वो चाहे देश के सांसद हों, चाहे वो देश के सरपंच हों, प्रमुख हों, प्रधान हों, चाहे वो देश के डॉक्टर चाहे हो या व्यापारी हो, देश के सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके कर्तव्यों के प्रति आध्यात्मिक बात को जोड़कर ईश्वर को उसमें शरीक करके एक नई प्रेरणा का जो काम शुरू किया है, हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत बहुत आभारी हैं। आज के इस युग में जहां लोग ईश्वर को याद तो करते हैं लेकिन काम करते वक्त में अपने स्वार्थों की पूर्ति के वक्त में अपने राजनीतिक साधन स्वार्थी के रूप में जब वो देखता तो ईश्वर को भूल जाता है। उस भूल को सुधारने के लिए राजनीति में आध्यात्मिक बात को शरीक करने के लिए हम अपने रोजमर्रा को कामों के साथ ईश्वर को शरीक करने के लिए एक नया मिशन के रूप में हमारे देश में ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो देश की शुद्धता के लिए, देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हमारे दिलों में ईश्वर का खौफ पैदा करने के लिए जो एक ट्रेनिंग और एक सम्मेलन का माध्यम बन के हमारे एक साफ सुथरा रास्ता बता रहा है, हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत आभारी हैं। आज करीब 57 साल से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हिंदुस्तान बाखूबी चल रहा है। ये चल रहा है ईश्वर की कृपा से। एक अंग्रेज ने एक हिस्ट्री में लिखा है, मैं हिंदुस्तान के भ्रमण पर आया, मैंने यहां सब कुछ देखा लेकिन एक बात देख करके बहुत हैरान रहा और उस बात के मेरे मन को एक प्रेरणा मिली कि यहां सब कुछ होते हुए भी ईश्वर प्रधान है। ईश्वर को लोग प्रधान मान करके अपना काम कर रहे हैं, अपने देश को चला रहे हैं।
माननीय कांतिलाल भूरिया जी आए, उनका आवाहन कर रही हूं और अपने विचारों से इस सम्मेलन का उद्घाटन भाषण करें।
हमारे पूर्व वक्ताओं ने, बहनों ने और भाइयों ने एक बहुत अच्छे विचार यहां पर व्यक्त किए, उसे हमारे जीवन में उतारना है, ग्रहण करना है, उसका मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन तक सुनते हैं और बाहर जाके इस कान से उस कान से निकाल के अपने अपने गांव, अपने अपने घर, फिर गांव वाले पूछते हैं भाई सम्मेलन में क्या हुआ, अरे ये लोग आए थे कुछ बोल के चले गए। आज इतने अपन लंबे समय तक यहां पर तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा फायदा जो हमारे दूर दराज गांव में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा हमारा भारत जो कि सूर्यवंशियों का देश माना जाता है था, आज परमात्मा ने अपरम अपार प्रकृति के तत्वों जल थल वायु अग्नि और आकाश दिए हो और जिनकी बदौलत हरियाली और खुशहाली का माहौल हुआ करता था, आदरणीय साथियों। किंतु आज हमारा भारत और हमारी ग्रामीण व्यवस्था को फिर सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत तभी विकसित देशों की बराबरी में आएगा जब भारत की 70% ग्रामीण आबादी को संपूर्ण आकाश विकास प्राप्त होगा। साथ ही औद्योगिक क्रांति ने कृषि कार्य के लिए अनेक यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराई है, परंतु यंत्रों के साथ साथ दिव्य मंत्रों का संतुलन जब हो जाएगा तो खेत सोना उगलने लगेंगे। मंत्रों से अभिप्राय अलिष्ट श्लोकों से नहीं वरन जीवन को मूल्यों की माला में पिरो लेना ही इसका अभिप्राय है। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी ही सुंदरता है, इस बात को जीवन में उतारने वाले के भीतरी गुण उगलते सूर्य की किरणों की तरह बाहर बिखरने लगते हैं। हम इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्रामीण विकास प्रभाग की अन्य गतिविधियों सेवाओं के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए हैं और आप सबको निवेदन करते हैं कि ऐसी आध्यात्मिक संस्था जो एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण का कार्य बिना किसी धर्म जाति वर्ण या भाषा भेद के समान व निरपेक्ष भाव से सर्व में आध्यात्मिक जागृति लाने के कार्य में जुड़ी है और उनकी हर तहसील में और काफी गांवों में पाठशालाएं चलती हैं, उनका खुद भी लाभ लें और औरों को भी लाभान्वित करके ईश्वर की दुआओं प्राप्त करें और औरों को भी दिलाएं, ऐसी मंगल कामना करता हूं।
आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति विश्व वंदनीय दादी माँ, जिन्हें हम दादी डॉक्टर प्रकाश मणि जी के नाम से जानते हैं।
ओम शांति, सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। आज हमारे सभा में
सरपंच
सभी सारे देश के
सरपंच
पहुंच गए हैं, तो पहले सबसे उन सब सरपंचों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। तो दादी बड़ा नई भाषण करती, छोटी बात कहती कि आप सब जो भी सरपंच आए हो, जो भी बड़े छोटे देश से गांव से पहुंच गए, सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
चार बिंदु याद रखना, चार बिंदु बता।
तो आप सबको दादी चार बातें कहती है। एक तो यहाँ आप सभी आए हो, तो ये राज्यों का अभ्यास जो कर रहे हो, एक तो उसमें मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, जो आत्मा भी एक चैतन्य बिंदु ज्योति रूप है। दूसरा परमात्मा पिता है हम सभी का, बाप है, सर्वधर्म वाले उन्हें अपने अपने भाषा में फादर बाप मानते हैं, ऐसे सर्वधर्मों का वो पिता बाप है। तीसरा, ये सारा सृष्टि एक ड्रामा के तरह है, ये सृष्टि एक ड्रामा की तरह है। ये ड्रामा बराबर हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है, जिसमें हर एक अपना पार्ट बजाते ही रहते। चौथा, जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते हैं, उतना उतना धारणा से अपने में शक्ति भरते हैं, जिस धारणा से जीवन में शांति प्रेम सुख मिलता है। ऐसे जीवन में शांति धारण करना और ये राजयोग का अभ्यास करते रहना।
और अभी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने इस ग्राम विकास प्रभाग की नींव डाली, जिनके हृदय में सदैव एक किसान का चेहरा घूमा करता था और चाहते थे कि सेवा को ऐसा साकार स्वरूप पहनाया जाए, तो आदरणीय मोहनी बहन।
ओम शांति। इस शांतिवन परिसर में अखिल भारतीय सरपंच महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ और हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस बारे में दिए। हरेकों को अच्छाइयों का भी पता है, बुराइयों का भी पता है, क्या करना है वो भी पता भी है और आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया भी। इन बातों को अपनाया नहीं है, मूल्यों को अपनाया नहीं है, तब तक हमारा जीवन मूल्यवान नहीं बन सकता है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के लिए तो बताया, साथ में ये भी कहा कि इस समय आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। जब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं आती है तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है जीवन में शांति, और शांति आती है जब हमारे दिल के अंदर सच्चाई होती है, परमात्मा से प्यार होता है, अपना स्वमान होता है। तो जब ये बातें हमारे अंदर होती है तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही शांत, ऐसा ही महान, और हमारे कर्म ऐसे ही दूसरों को प्रेरणा देने वाले, दूसरों को बल देने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे हमारे कर्म होते हैं। हमारी वाणी मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, सत्यता से बोलो, सत्य बोलो लेकिन प्रेम से बोलो। तो ऐसा हमारे भारत का आदि संस्कार था, गुण था, तभी भारत सर्व देशों का महागुरु कहलाता है। तो आज भी सबकी निगाह भारत के ऊपर है कि भारत क्या कर रहा है। तो भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, आत्मिक शक्ति से ये दुनिया के परिवर्तन का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम पल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो इतना दूषित हो गया है कि अब जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मनुष्य का जीवन फिर से सुखी शांत नहीं बन सकता है। इसलिए ये भाइयों और बहनों परिवर्तन का समय है। अब हमें जागृत होना है, अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करना है, परमात्मा से शक्ति लेनी है। और आपको बताया भी गया है कि कैसे परमात्मा को याद करके, परमात्मा से शक्ति लेकर हमें स्व परिवर्तन करके विश्व का पतन करना है।
पावनता का पानी दे हम प्रभु प्रेम का धो, दिल के लगन की हवा लगे सजे धरा का रो, मीठे मीठे मुस्कानों से हो, मीठे मीठे मुस्कानों से मन मधुबन महकाए, अपनी प्यारी धरती को हम ऐसा स्वर्ग बनाए।
विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है, एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है, इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है। एक युग विचित्र बाबा देखा। को नहीं अनुमान उसका सब करते बखान जिसका किसी को नहीं अनुमान बिन देखे और बिन जाने सब करते हैं उनका ध्यान हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है हर एक दिल के तख्त पे चमके सबका नैन सितारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है एक विचित्र बाबा देखा बिन बोले बेतावर दान जिसकी न देह और ना अभिमान न देह और नाभिमान सब धर्मों के पूज्य महान हर मन में जिनका सम्मान चाहे कोई पहचाने नहीं फिर भी सबका प्यारा है चाहे कोई पहचान नहीं फिर भी सबका प्यारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है एक विचित्र बाबा देखा।